इतना बता दे भगवन, लगी ये कैसी लगा रहा है मुझे में रह कर, मुझे से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है। कैसी लगा रहा है मुझे में रहकर, मुझे से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है।
शांति। पाश्चात्य जगत के लेखक और कवि खलील गिब्रान ने एक कविता लिखी है, जिस कविता में एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने आता है। दस्तक, अंदर से आवाज कौन है? वो कहता है, मैं हूं तुम्हारा प्रेमी। अंदर मौन सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। उसे लगता है कोई गलती हो गई, वापस जाता है, फिर चिंतन करता है, प्रेम के विषय में सोचता है, फिर आता है। दस्तक, कौन है? वो कहता है, तुम ही हो। मैं हूं ही नहीं, बस तुम ही हो। मौन सन्नाटा, कोई उत्तर नहीं। फिर जाता है, सोचता है अब क्या करूं। दरवाजा तो खुला ही नहीं। कई सालों बाद फिर लौटता है, फिर से दस्तक, अंदर से आवाज कौन है? कोई उत्तर नहीं, मैं हूं ही नहीं। तब दरवाजा खुलता है। प्रेम अव्याख्य है, प्रेम अवर्णनीय है। प्रेम में आत्मा जो अनुभव करती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे ऐसी ऐसी चीजें होती है, ऐसी ऐसी सूक्ष्म बातों का अनुभव होता है जो केवल वो खुद ही समझ सकता है। जरा तू इतना बता दे भगवान, लगी ये कैसी लगा रहा है, ये अंदर आग जो लग रही है ये कौन लगा रहा है, इतना बता दे ये क्यों हो रहा है। मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है। उसे पता है वो अंदर है नहीं, परंतु अनुभव उसको ऐसे होता है कि वो अंदर ही है, अंदर ही बैठकर मुझी से खुदी को, खुदी की खोज करा रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम? हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी, पुकारता मन तुम ही को क्यों फिर, तुम ही जो दिल में समा रहा है, तू ही समाया हुआ है दिल में, फिर भी तुझे पुकार रहा है, तुझे खोज रहा है। तुम ही सब कुछ हो, प्राण भी तुम, स्पंदन भी तुम, नयन भी तुम, ज्योति भी तुम ही को लेकर तुम्हें ही ढूंढू। नहीं, ये लीला दिखा रहा है। ये कैसी लीला है? अंदर तुम बैठे हो और तुमको ही खोज रहा हूं। भाव भी तुम हो, तुम ही वंदना, संगीत तुम हो, रचना तुम हो, स्तुति तुम, तुम्हारी तुम्हें सुनाओ। ये कैसी पूजा करा रहे हो मुझसे? कर्म भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता, निमित्त कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसा नचा रहे हो? ये कैसा नाच नचा रहे हो? तो परमात्मा प्रेम, प्रभु प्रेम, और आत्मा इस प्रेम में भगवान से जुड़ जाती है, एक हो जाती है। इस एक होने को ही क्या कहा गया है? योग। और इस योग से बल की प्राप्ति होती है। संसार में जो भी जुड़ाव है उससे शक्तियां क्षीण होती है। जहां भी लगाव है, जुड़ाव है, जुटाव है, वहां पर शक्तियां नष्ट होती है, व्यय होती है। भगवान से जो जुड़ाव है, भगवान से जो योग है, भगवान से जो जोड़ना है, उसमें शक्तियां भरती है, और उसको कहा जाता है योग बल। आज की साकार मुरली। बाबा ने पूछा है योग बड़ा है या ज्ञान, क्या कहेंगे? जैसे भक्ति मार्ग में पूछा जाता है, क्या मंजू बहन पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध, तो पुरुषार्थ कहा जाता है, वैसे ही ज्ञान बड़ा है या योग? बाबा ने कहा योग बड़ा है, ज्ञान से भी योग बड़ा है। ज्ञान तो पूर्व तैयारी है योग की। जीवन का लक्ष्य ज्ञान नहीं है, जीवन का लक्ष्य तो योग है। जीवन का लक्ष्य तो है उस परमात्मा तक पहुंचना, उससे जुड़े रहना। योग माध्यम है वहां तक पहुंचने का। तो आज की मुरली में बाबा ने योग बल की चर्चा की है, तो आज हम योग बल की चर्चा करेंगे। ये योग बल क्या है? शास्त्रों में योग बल के विषय में क्या लिखा है? भगवान ने योग बल के बारे में क्या कहा है? मुरली में आज के योग बल के कौन से महावाक्य है? योग बल से किन सिद्धियों की प्राप्ति होती है? किन शक्तियों की प्राप्ति होती है? योग से क्या फायदे होते हैं? पांच बातें आज की साकार मुरली में आई है योग के विषय में। सबसे पहला, योग से तुम्हारी ज्योति जगती है, भोग से ज्योति बुझती है। आज की मुरली की लास्ट लाइन, अच्छा से पहले, मंजू बहन जब तक किसी को ज्ञान ना सुनाओ तब तक खाना नहीं खाएंगे, ऐसा उमंग उत्साह हो। नाश्ता भी नहीं, खाना अर्थात आ गया ना उसमें, कैसा उमंग उत्साह हो। जब तक किसी को ज्ञान ना सुनाओ, तब तक खाना ही नहीं है, ऐसा उमंग उत्साह होना चाहिए। तो सबसे पहली ज्योति, पहली पॉइंट, योग से तुम्हारी ज्योति जगती है, अर्थात भोग से ज्योति बुझी है। जहां भोग है वहां पर योग नहीं, भोग नहीं तो आत्मा को कमजोर कर दिया है। दूसरा, योग से आत्मा पावन बनती है, पवित्र बनती है। तीसरा, योग से तुम दुनिया को पावन बनाते हो, अर्थात इस पहाड़ को उड़ाए, कौन सा पहाड़ बनाते हो, सोने का पहाड़ बनाते हो। प्रश्न में है उठाए और मुरली में है उड़ाए। इस पहाड़ को फूंक देते हो कलयुग के, हाँ? प्रश्न में उठाया और मुरली में उड़ा दिया ऐसे। तो इस तत्वों को भी तुम पावन बनाते हो। पांच तत्व जो तमो प्रधान बन गए, शक्तिहीन बन गए, उनको भी तुम पावन बनाते हो अपनी योग की शक्ति से, अपने योग के बल से, अपनी योग की पावर से। ज्ञान तत्वों को पावन नहीं बना सकता, योग तत्वों को पावन बनाएगा। चौथा, देहभान में आते हो तो विकार की चेष्टा होती है। मुरली में कहा है, देहभान में आते हो तो विकारों की चेष्टा होती है। चेष्टा अर्थात कोशिश करना, चेष्टा करना, प्रयत्न करना। चेष्टा करना अर्थात व्यर्थ प्रयास करना, या अनैतिक प्रयत्न करना। यह चेष्टा करना बंद करो। योग विकारों से छुड़ाता है। योगी कभी विकार में जा नहीं सकता, आज की मुरली के वाक्य है। योग से विकारों से मुक्ति। और पांचवा, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल। एक एक कर्मेंद्रियों में विकार की दुर्गंध है। इन विकारों की दुर्गंध को सुगंध में परिवर्तित अगर करना है तो योग का सौरभ, योग की महक चाहिए। तो योग से ये पांच चीजें होती है। आत्मा की ज्योति जगेगी, आत्मा पावन बनेगी, दूसरों को पावन कर सकेंगे, विकारों से छूटेंगे और अपनी कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण अधिकार होगा, कंट्रोल में होगी, चलायमान नहीं होगी। चलायमान कर्मेंद्रिया विकारों की तरफ आकर्षित होती है। योग बल है, क्यों? योग की 10 परिभाषाएं, एक एक परिभाषा में उसका बल समाया हुआ है। 10 परिभाषाएं शास्त्रों में, योग से 8 सिद्धियों का वर्णन है पतंजलि सूत्र में, भागवत में 10 सिद्धियों का वर्णन है योग से। और योग से लोगों ने बहुत कुछ किया है। विश्वामित्र के पास ऐसी योग की शक्ति थी कि हरिश्चंद्र के पिता कौन, त्रिशंकु, नया स्वर्ग स्थापन कर दिया उसके लिए, ऐसा गायन है। देवताओं ने नीचे फेंका, इसने नीचे गिरने नहीं दिया, इसलिए बीच में लटका रहा। अगस्त ऋषि का गायन है, पूरा समुद्र पी गए। ये सब ऋषि कौन थे जिनका शास्त्रों में वर्णन है? यहीं बैठे हैं सारे, अगस्त, कपिल, विश्वामित्र, वशिष्ठ, दुर्वासा भी है कोई कोई, शाप तो उनके मुख पर ही है। योग बहुत करते हैं पर दिन में क्रोध भी बहुत करते हैं। किसी ने जरा गड़बड़ करती की कुलाड़ी नहीं, शाप। तो शंकराचार्य 6 वर्ष की उम्र में सारे शास्त्र पारंगत कर लिए, शास्त्रों में पारंगत हो गया योग बल। तो ये योग बल का बहुत गायन है। एक एक ऋषि व्यास त्रिकालदर्शी, ये सब कौन सी शक्ति है? योग की शक्ति है। इनके पास तपोबल था, वन में बैठ के तपस्या करते रहते थे सुबह से लेकर शाम तक। दिनचर्या उनकी कैसी थी? एकदम संसार से अलग थलग, दूर जहां मनुष्यों की आवाज भी नहीं, ऐसे निर्जन स्थान पर बैठकर तपस्या करते रहते थे और योग का बल जमा करते रहते थे। तो वो ऋषि मुनि कौन है? हम तपस्वी आत्माएं। योग अर्थात स्मृति, और जब स्मृति आ जाती है तो पावर आ जाती है, इसलिए योग बल कहा गया है। दूसरा, योग अर्थात संबंध, और जब किसी से संबंध जुड़ जाता है तो अपने आप शक्ति आने लगती है, क्योंकि संबंध किससे जुड़ा है, वो है कौन? इस त्रिभुवन का स्वामी, इस संसार का नियंता, सर्वश्रेष्ठ सत्ता, जगत का आधार, बीज, चैतन्य बीज जिसमें सारा संसार समाया हुआ है, उसके साथ संबंध जुड़ गया। प्रेसिडेंट ही दोस्त बन गया, प्राइम मिनिस्टर ही दोस्त बन गया, तो फोन की देरी पर है, बस एक फोन कर दो, फोन करने की जरूरत नहीं, एक मिस कॉल दे दो, समझ जाएगा इसको क्या चाहिए। संबंध, संबंध जुड़ा किससे है? वो जो सर्वोपरि है, वो जो सब कुछ है। एक अंग्रेजी लेखिका अपनी कविता में लिखती है भगवान के लिए, दो अर्थ एंड मून वेयर गॉन, यदि ये चंद्रमा, ये धरती नष्ट हो जाए, एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी, और ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी पृथ्वी, ये सारा कायनात समाप्त हो जाए, एंड थाउ वर्ट लेफ्ट अलोन, अगर तू अकेला रह जाए बस, ये सब कुछ नष्ट होके, एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन थी, फिर भी सब कुछ तुझ में समाया रहेगा, सब कुछ खत्म होने के बाद भी तू अगर रहा अकेला, तुझ में सब कुछ रहेगा, उसके साथ संबंध है, तो अपने आप पावर आ जाएगी। संबंध रूहानी है, अलौकिक संबंध में शक्ति है, लौकिक संबंध बंधन है। और अलौकिक परिवार में लौकिक संबंध बनाए, जोड़े, तो वो भी बंधन बन जाएंगे, आत्मा को उड़ने नहीं देंगे, परी नहीं बनोगे फिर। संडे की मुरली में था, ज्ञान योग के पंख कट जाएंगे, पर कटी चिड़िया। तीसरा, योग अर्थात मिलन, मिलन हो जाए भगवान से सुबह सुबह, सुबह सुबह पर्वत की चोटी पर जाकर उससे मिलके आ जाओ, नीचे आके गांव वालों को कहो हम किससे मिलके आए पता है क्या, वो जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसने साक्षात हमें दर्शन दिए है, तुम्हें तो स्वप्न में देते हैं, हमें तो अपरोक्ष दर्शन दिए है, डायरेक्ट हमसे बात करता है, अभी अभी भगवान से बात करके आए हैं, और उसने मुझे प्रेरणा दी है कि यहां ये करो, वहां वो करो। गांव वाले ऐसे देखते रहेंगे, अच्छा आपके लिए फ्री बैठा है भगवान, कहना बैठा है। मिलन हो जाए, योग अर्थात मिलन, और जो भगवान से मिलन होता है वहां पे शक्ति आ जाती है, योग बल भर जाता है, वो बल है। योग बल अर्थात क्या, बल क्यों कहा है योग को? क्योंकि योग मिलन की अवस्था है, दैहिक मिलन शक्तियों को नष्ट कर देता है, अलौकिक मिलन शक्तियां भर देता है, दैहिक मिलन फ्रस्ट्रेशन कुंठा पैदा करता है, अलौकिक मिलन अतीन्द्रिय सुख को उत्पन्न करता है। चौथा, योग अर्थात लगन में मगन, लगन लग गई है बस, उसी का चिंतन है, उसी का ध्यान है, और कुछ सोचता ही नहीं, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वही अच्छा लगता है बस, उसका ही रूप अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी उसी के उसी रूप में स्थित है, इसीलिए वो अच्छा लगता है। और जब हम देह में है तब उससे बहुत दूर है, तब देह के लोग देह दुनिया अच्छी लगती है, पर जब हम उसी के जैसे हैं तो अपने आप लाइक अट्रैक्शन होता है इधर। योग अर्थात लगन में मगन अवस्था। पांचवा, योग अर्थात यात्रा, याद की यात्रा है योग। योग क्या है? एक यात्रा है, ये वो तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद में व्यक्ति कैसा होता है? पावरफुल, चार्ज हो जाता है, संसार के भोग विलास में डूबा रहता है और अचानक एक दिन तीर्थ जाता है। तीर्थ पे आने के बाद पावरफुल हो जाता है कि अपने आप पुण्य कर्म होते हैं, तीर्थों में दान पुण्य करता है, तीर्थों में विकारों में नहीं जाता है, तीर्थों में ऐसी नशीली दवाई या द्रव्यों का सेवन नहीं करता है, किसी को दुख नहीं देता है, अति सुशील बन जाता है, सभ्य बन जाता है, धार्मिक बन जाता है, प्रवचन सुनता है थोड़ी बहुत, मंदिरों में जाके पूजा आरती जप यज्ञ करता है, तो ये भी वो यात्रा है। और तुम्हारा सबसे बड़ा तीर्थ परम धाम है, वहां जाकर तुम आते हो, तो आने के बाद शक्तिशाली तो होंगे, इसलिए योग बल का गायन है। तो योग अर्थात स्मृति, स्मृति आते ही आत्मा को, स्मृति आते ही आत्मा शक्तिशाली बनती है। योग अर्थात संबंध, इस संबंध के जुड़ते ही आत्मा पावरफुल बनती है। योग अर्थात मिलन हो जाता है, इसलिए पावरफुल बनती है। योग अर्थात लगन में मगन, इसलिए पावरफुल बनती है। योग अर्थात याद की यात्रा, इसलिए पावरफुल बनती है। पांच, छठवा, योग अर्थात समर्पण। आत्मा अपने आप को स्वाहा कर देती है, किसके आगे समर्पित करती है? वो जो संसार का नियंता है, वो जिसकी गारंटी है, अहम त्वा सर्व पापोऽप्युमोक्षयिष्यामि मा सुच सर्वधर्म परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ, मन मना भव मत भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु, बस मेरा ही गुणगान कर, मेरी ही शरण में आ, कैरी मी माय योग इज माइल्ड। भगवान कहता है बाइबल का, मुझे अपने साथ रखो, मेरा वजन बहुत कम है, मैं भारी नहीं हूं, मैं बहुत हल्का हूं। कैरी मी माय योग इज माइल्ड, बहुत कम है मेरा वजन, पर तुम आते ही नहीं। योग अर्थात समर्पण, और जहां आत्मा समर्पण कर देती है अपना, अपने आप उसमें पावर भरती है, क्योंकि अब वो आत्मा की पावर नहीं, उसकी पावर इससे चलेगी, उसकी पावर इसमें भर जाती है। सातवा, योग अर्थात अटेंशन, और जब व्यक्ति अटेंशन में रहता है, पावरफुल रहता है, और जब उसका अटेंशन बिखरा है तब वो पावरफुल नहीं है। योग अर्थात एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्र है, कांच एकाग्र है, वो सारे किरणें एकाग्र हो जाती है कांच में और जलने लगता है। वैसे कागज को दिन भर रखो सूरज के नीचे, जलता है क्या? नहीं जलता है। कब जलता है? जब मैग्नीफाइंग ग्लास रखा जाता है, किरणें आती है, परावर्तन, रिफ्रैक्ट, और जलने लगता है। योग अर्थात एकाग्रता, इसलिए योग बल है, क्योंकि एकाग्रता में बल है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा, इफ आई हैव टू बिगिन माय एजुकेशन ऑल ओवर अगेन आई विल फर्स्ट मास्टर द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड देन एट वन गो गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन। अगर मुझे अवसर दिया गया तो मैं सबसे पहले एकाग्रता की शक्ति हासिल करूंगा, अगर मुझे फिर से छोटा बच्चा बनाया जाए सबसे पहले मैं ये काम करूंगा, और संसार में फिर जितना ज्ञान है त्रिभुवन में वो एक धक से आत्मसात कर लूंगा। एकाग्रता। नौवा, योग अर्थात आत्माभिमानी स्थिति और परमात्माभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस एंड गॉड कॉन्शियसनेस। योग अर्थात ही सोल कॉन्शियसनेस, और जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तब परमात्मा कॉन्शियस होने की आवश्यकता ही नहीं है, बाबा को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा समझते ही सब कुछ स्वतः ही होने लगता है। सारा पुरुषार्थ ही आत्मा समझने का है। कल क्या कहा था, यथार्थ याद अर्थात, प्रभाकर भाई, यथार्थ याद अर्थात, विठल भाई, यथार्थ याद अर्थात आत्मा समझ के याद करना और शरीर को भूल जाना, अपनी देह भी याद ना है, किसी की भी देह याद ना है। दसवा, योग अर्थात शक्तिपात, एनर्जी ट्रांसफरेंस। योग अर्थात आत्मा में परमात्मा की शक्तियां भर रही है, शक्तिपात जिसको कहते हैं। योग की 10 परिभाषा है, इसलिए योग बल है, क्योंकि उसमें शक्तिपात हो रहा है, शक्तियां भर रही है उसमें, और जिसमें योग बल है उसमें सिद्धियां आ जाती है। कौन कौन सी सिद्धियां? शास्त्रों में 8 मुख्य सिद्धियों का गायन है। कौन कौन सी निखिलेश भाई, किधर है? हाँ, 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां कहते हैं ना। सबसे पहली सिद्धि कौन सी? अनिमा, अनिमा, अनिमा अर्थात छोटा हो जाना, अनिमा अर्थात छोटा सा हो जाना, महिमा अर्थात बड़ा हो जाना। ये वास्तव में दिखाया, जैसे हनुमान जी का दिखाया ना, लंका के द्वार पर पहुंचते हैं, वो लंकी नहीं खड़ी है वहां पर, क्या करता है वो, छोटा बन जाता है। और बड़ा कब बनता है? जब वो बीच में, क्या नाम है उस राक्षस का, सूरसा, सूरसा के मुख में जाता है तो वह बाहर आ जाता है, वो तो छोटा नहीं, एक बार बड़ा भी बन जाता है। हाँ, उसको बड़ा बन के मार भी देता है तो वो कहती है हाँ अब याद आया, जब ऐसा कोई आएगा और मुझे मारेगा तो लंका का अंत नजदीक है। यहां क्या है इसका अर्थ, अलौकिक भाषा में, योग करते करते हम में ये 2 पावर आ जाएगी। कौन सी 2 पावर्स? सार विस्तार, और जब चाहे वहां छोटा हो जाना, जहां चाहे वहां बड़ा हो जाना, मास्टर, बालक, मालिक, ये भी उसके अर्थ हो सकते हैं। छोटा सा हो जाना अर्थात अति सूक्ष्म हो जाना, अर्थात बातों को सूक्ष्मता से जानना, समझना, या बड़ा हो जाना, दोनों चीजें उसमें, अहिमा महिमा। उसके बाद में है गरिमा और लघिमा। लघिमा और गरिमा, गरिमा अर्थात, गरिमा अर्थात भारी, और लघिमा अर्थात हल्का। जब चाहे तब हल्का हो जाना, जब चाहे तब भारी हो जाना। हल्का कब होंगे? परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न बातें जो होती है उसमें हल्का रहना, किसी ने कुछ बोल दिया हल्का। और भारी कब होंगे? माया पर भारी हो जाओ एकदम। भारी हो जाना अर्थात पावरफुल हो जाना, शक्तिशाली हो जाना, उसको कहते हैं लघिमा महिमा। ये 2 सिद्धियां है, योग की सिद्धियों का गायन है। फिर है प्राप्ति, बिना रोक टोक कहीं पर भी जा सको, बिना रोक टोक सूक्ष्म शरीर धारण करो और कहीं पर भी घूमो, इसको कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। कहीं पर भी संसार में जा सकते हो, किसी के भी पास जा सकते हो बिना रोक टोक के, कोई नहीं कहेगा यहां मत जाओ, कहीं पे भी घुस सकते हो, किधर भी किसी के पास भी जाओ, सकाश दो और वापस आ जाओ, उसको कहते हैं प्राप्ति। फिर है प्राकाम्य, प्राकाम्य अर्थात जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, केवल इच्छा करने की देरी है, हम इच्छा करेंगे और वो पूर्ण होगी। फिर है इषित्व, इषित्व अर्थात किसी पर भी अधिकार, अधिपत्य, ये भगवान के लिए कहा जाता है इषित्व, ईश्वर का गुण है ये। और लास्ट है वशित्व, किसी को भी अपने वश कर सकते हो, वशीकरण मंत्र, पति को वश के वश में करने का मंत्र अलग, पत्नी को वश में करने का, ऐसे वो लोग देते हैं ना क्या सासू को वश में करने का मंत्र ये सारी सिद्धियां हैं, इसको आठ सिद्धियां कहते हैं। वशित्व, किसी को भी अपने वश कर लेना। ईशित्व, किसी पर भी अपना अधिकार अधिपत्य स्थापित कर देना। प्राप्ति, प्रकाम्य, प्राप्ति, कहीं पर भी चले जाना, कोई भी इच्छा पूर्ण कर लेना, बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, हल्का हो जाना, भारी हो जाना, ये आठ सिद्धियां है। ये पतंजलि योग सूत्र में है, परंतु भागवत की दस सिद्धियां अलग है। भागवत में भी दस सिद्धियों का वर्णन है। सबसे पहला है अनुमिमत्त्वम्, अर्थात न भूख न प्यास ये कुछ नहीं सताएगी, ये सिद्धि है। अनुमिमत्त्वम्, अनुमिमत्त्वम् ये संस्कृत शब्द है, अर्थात भूख प्यास। योगी कहां बैठते हैं? हिमालय में, वहां ना तो पानी है, वहां ना तो भोजन है। हाँ, जंगल में जो बैठते हैं उनके पास तो भोजन पानी मिल जाता है, पर जो हिमालय में बैठते हैं वहां कुछ भी नहीं है, फिर भी सालों साल रहते हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास ऐसी कुछ सिद्धियां आ जाती है कि आवश्यकता ही नहीं रहती है सब चीजों की। सूर्य योगी सूर्य की किरणों से ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं, वायु योगी वायु से ही भोजन ग्रहण कर लेते, फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती उनको, ये सिद्धियां है। आत्मा चंद्रगुप्त के जीवन में दिखाया हुआ है, चंद्रगुप्त भटक गया है, छोटा सा बालक है, और वो एक साधु वहां बैठा है, तो कहता है कि मुझे प्यास लगी है, पानी कहां है? कहते पानी उधर है, जाओ उधर, पर वहां एक बाग है, अगर तुम देखो कैसे जाओगे वहां पर। और वो कहता है आप क्या करते हो? कहता है ये मनुष्यों की विवशता है, भूख प्यास, इन विवशताओं के साथ कोई तपस्या नहीं कर सकता। वो साधु ऐसा कहता है उसको, तो चंद्रगुप्त जाता है, वो बाघ होता है, फिर भी चुपके से जाके पानी भर के आता है। वो साधु उसको कहते तुम वापस कैसे आ गए? कहते बस मैं जाके आ गया, बाघ था वो कहां था, तुम डरे नहीं? नहीं डरे। कहता ये बालक साधारण बालक नहीं है, ये जरूर कोई विशेष बालक है, ये भारत का सम्राट होगा। वो भविष्यवाणी वही कर देता है, भारत का प्रथम सम्राट। तो सबसे पहली शक्ति क्या है? भूख प्यास से व्यक्ति ऊपर उठने लगता है, और जो भोगी है वो दिन रात क्या चिंतन करता है? आज क्या बना है, ये बन गया, अब दोपहर में क्या बनने वाला है, शाम को टोली में क्या है, दिन रात भोजन का ही चिंतन करते रहता है, भोजन 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 का भजन करता रहता है, क्या खाऊं और किसको खाऊं, किसका दिमाग दूसरा है दूर श्रवण, यहां बैठे हुए वहां की आवाजें आने लगती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, यहां बैठे ही वहां क्या हो रहा है। जैसे संजय, संजय को आवाज आ रहा है दूर श्रवण, क्लायर ऑडियंस, इंग्लिश में कहते हैं क्लायर ऑडियंस। क्लायर ऑडियंस अर्थात यह साइकिक पावर है, पैरानॉर्मल पावर कहा जाता है इसे। यहां बैठे हुए पर व्यक्ति दूर की आवाजें सुनने लगता है, वो है दूर दर्शनम, क्लायर वॉयंस। एक है क्लायर वॉयंस, एक है क्लायर ऑडियंस, सुनना और देखना, ये शक्तियां है। जा नहीं रहे, यहीं बैठे हुए वहां के दृश्य दिखाई दे रहे, ये मुरलियों में कहा है बाबा ने, तुमको सब कुछ दिखाई देगा, एक समय आएगा आवाज सुनाई देगी, दूर का दृश्य दिखाई देंगे क्या हो रहा है। जैसे जैसे तुम्हारी योग बल तुम्हारा बढ़ते जाएगा, ये शक्तियां तुम में आने लगेगी। उसके बाद है मनोजवा, मतलब शरीर को जहां चाहे वहां ले जा सकते, सूक्ष्म शरीर को, एक जगह बैठ के सूक्ष्म शरीर के साथ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं, या टेलीपोर्टेशन, मनोजवा। अगला है कामनापूरम, अर्थात जो भी रूप बनाना है अपना वो बना सकते हो, जैसे रावण के पास शक्ति थी ना, ब्राह्मण बन गया, कुछ बन गया, वैसे कुछ भी बना दो, कभी फरिश्ता बन जाओ, पांच स्वरूप, पांच मिनट में, एक घंटे में कितनी बार, पांच सेकंड या पांच मिनट, होमवर्क दिया है, चालू है ना। अच्छा अभी याद आया बहुत दिन हो गए वैसे मुरली को, एक एक घंटे में करने बोला था बाबा ने, दूसरे काम आ गए ना रोज के मुरली वाले। फिर है परकाया प्रवेशम, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, जैसे शंकराचार्य का दिखाया है। क्या करता है वो, अपने शरीर को अलग कर देता है, शिष्यों को कहता है इसका ध्यान रखना, और राजा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यहां मत करना कोशिश। फिर है स्वच्छंद मृत्यु, अपनी मृत्यु खुद डिसाइड करना, स्वेच्छा मृत्यु खुद डिसाइड करना, आज इतने बजे जाने का समय है। हमने देखा है ऐसे कई कई पेशेंट सुबह सुबह बोल देते कि आज बस अब पूरा करना है, कोई ना कोई इशारा दे देते कई बार, कोई कोई सारे नहीं, बड़े रेयर कोई कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इशारा देते थे कि आज वो, नहीं तो कैसे, असंभव है ये बताना, असंभव। कितना भी सीरियस पेशेंट हो पर ये कोई नहीं कह सकता कि आज जाएगा। इच्छा मृत्यु कई हो के शास्त्रों में भी, जगदीश भाई को भी पता चल गया ना जा रहा था, विवेकानंद का भी दिखाया है, वो पंचांग लेकर बैठ गए, देख रहे कौन सी डेट कब जाऊं, अच्छा ये डेट ठीक है, उसको टिक मार्क भी करके रख दिया गोल करके। वो क्यों किया किसी को बताया नहीं, वो तो जाने के बाद लोगों ने देखा ये क्यों गोल करके रखा है। तो कई सारे संसार के महान योगी है हुए हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया पहले कि हमको ये तारीख को जाना है। विनोबा भावे, विनोबा भावे भी पहले ही बता दिया था मैं काम पूरा हुआ है जा रहा हूं, ये शक्ति है। फिर उसके बाद में ये बहुत बड़ा है, एक देवानाम सह क्रीड़ा अनुदर्शनम, देवताओं के साथ क्रीड़ाएं करना खेलना कूदना मस्ती करना, यथा संकल्प समसिद्धि, जो संकल्प किया वो सिद्ध हो जाना, ये सिद्धि है। नहीं तो हम संसार के लोग सभी करते हैं, नए वर्ष में तो बात मत पूछो, 31 दिसंबर को कितने संकल्प करते होंगे लोग। एक बड़ा अच्छा चित्र आया था, ये है 30 दिसंबर, ये है 31 दिसंबर, ये है 1 तारीख। 31 दिसंबर को वो कुछ और कर रहा है, यहां पे संकल्प करता है पावरफुल, और वापस 1 तारीख को वही कर रहा है जो 30 तारीख को कर रहा है खाली एक दिन के लिए था वो बस। फिर है आज्ञा प्रतिथ कथी, जो आज्ञा कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, तत्वों पर आदेश, जैसे जीसस क्राइस्ट का दिखाया है, आदेश करता है पीस बी स्टिल, शांत हो जा, तूफान शांत हो जाता है, तत्वों को आदेश करता है। तो इसको कहा जाता है ये सारी है सिद्धियां, और ऐसी तो बहुत सारी सिद्धियां जिसको, जैसे वो टेलीकाइनेसिस, पायरोकाइनेसिस, यूरी गैलर वो था ना, चम्मच को अपने मन की शक्ति से मोड़ देना, ट्रेन को रोक देना, ये सारी सिद्धियां होती है। तो ये सब मत करते रहना, ट्रेन बिन को मत रोकना, और सिद्धियों के नुकसान भी है, जैसे वो रामकृष्ण परमहंस से बताते हैं ना, एक व्यक्ति एक योगी इतना सिद्ध हो गया कि उसके पास सिद्धियां आ गई, इतनी खुशी हुई उसको, ऊपर देखा पक्षी था, आग दृष्टि दी, वो पक्षी ने कुछ गिरा दिया उसके सिर पर, गंदा कर दिया, क्रोध आ गया, पक्षी को देखा और पक्षी जल गया, खुशी कि मुझे सिद्धियां प्राप्त हुई, आंखों से ऐसी रोशनी निकली, आग निकली, वो पक्षी जल गया। फिर उसके बाद उसने देखा एक जहाज है बहुत बड़ी जा रही है, और वो सोचता है अब मैं अपनी सिद्धि का प्रयोग करता हूं, और वो हवा को रोक देता है, हवा रुक गई, इतनी उसको खुशी होती कितनी पावर मुझ में आ गई, हवा रुक जाती है जहाज डूब जाता है, जितने लोग हवा में थे वो जहाज में थे सब डूब गए, उनके पाप का बोझ इसके ऊपर, सिद्धियां खलास। तो योग का बल जमा करना है, और योग बल जैसे जैसे जमा करते जाएंगे बहुत सारी शक्ति हम में आने चालू हो जाएगी, जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होने लगेंगे, पर हां किसी को बताना नहीं, फिर नहीं तो कहेंगे हमने आज सुबह यही सोचा था यही हो गया ना? हाँ, एक बार एक माता आई थी यहाँ पर इसी क्लास में, वो बता रही थी कि मुझ में ऐसी सब सिद्धियां आ गई है, मैं क्या करूं, सेंटर की मुरली क्लास पूरी होती है, मैं बैठती हूँ, सारे स्टूडेंट घेर लेते और कोई कहता है मुझे पीठ दर्द है, हाथ लगाती हूँ पीठ दर्द ठीक होता है, किसी को कोई बीमारी है वो बीमारियां ठीक होती है, ये सब सिद्धियां उसको अपने आप आ गई है, कोई आत्मा आई होगी कहीं से। तो मुझे क्या करूं, हमने कहा बंद कर दो इसको तुरंत, स्टॉप, नहीं तो यही माया हो जाएगी, ये माया है नहीं तो। जो भी साधना करेगा उसको सिद्धियां प्राप्त होगी, जो भी किसी भी तरह की, यही राजयोग नहीं कोई भी योग संसार का, कोई भी अपने आप सिद्धियां आने लगेगी जो भी, क्योंकि सिद्धियों के लिए प्यूरिटी चाहिए और प्यूरिटी की अपनी वो उसका परिणाम तो होगा ही, जो भी सिद्धियां करता है साधना करेगा कोई भी उसमें अपने आप पावर आने लगेगी। तो योग बल हमें जमा करना है, पर हमें अपना योग बल किस लिए जमा करना है, विश्व का कल्याण करने के लिए, विश्व को पावन बनाने के लिए, ना ही किसी की बीमारी ठीक करने के लिए। वो स्वामी विवेकानंद दिखाया है ना कि वो योग में बैठते और उनको बहुत पावर अनुभव होता है, फिर उनका जो मित्र है राखाल उसको कहते, वो कहते मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, वो कहते आओ, और अपना हाथ रखता है और लंबा समय तक हाथ रखा रहता है और सारा योग बल पूरी शक्ति एकाग्र कर संकल्प करता है इसका ये ठीक हो जाएगा, और वो कहता है एकदम ठीक हो गया। वो गुरु जी आते कहते तुमको, अरे मूर्ख तुमको ये शक्ति या घुटने दर्द ठीक करने की दी है क्या कि विश्व का कल्याण करने दी है, ये शरीर तो आज ठीक हुआ वापस बीमार पड़ेगा कल, ये आत्मा के कल्याण के लिए, ना कि ये सब शरीरों के लिए, शरीर तो आज है कल गया, कितनी भी बड़ी बीमारी है उसे निकल गया। कितनी बार ऐसा हुआ पेशेंट 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होता है, बहुत बड़ी बीमारी और सब कुछ ठीक, वेंटिलेटर ये वो, निकल गया, डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज करते करते हॉस्पिटल की सीढ़ियों में फिर गिरता है और गया डेथ। कितनी बार हुआ ऐसा, कितनी डेथ हुई गिरने की वजह से। तो ये हमारी, हमारा योग बल ये सब चीजों के लिए नहीं है। हाँ, अपने शरीर के बीमारियों पर उसका प्रयोग किया जा सकता है, वो ठीक है, वो भी निस्वार्थ भाव से कि हम अपने शरीर को 5 मिनट सकाश देते सुबह सुबह कि ये स्वस्थ रहे, योगी ये कर्मेंद्रिया शिथिल रहे, इसकी सारी बीमारियां दूर हो जाए, पर इसको बिजनेस नहीं बना देना कि आ जाओ क्या हो रहा है, जाओ ठीक हो जाएगा, इसमें माया है बहुत बड़ी। तो योग बल जमा करना है, योग की शक्ति अपने अंदर भरनी है, योग की जो 10 परिभाषाएं बताई है, जब भी योग में बैठे एक एक परिभाषा को याद करते करते उसी को योग करो तो वही 1 घंटा बहुत अच्छा योग हो जाएगा। स्मृति है, योग में मगन हो रहे, उससे संबंध जोड़ रहे, अटेंशन एकाग्र हो रहे, उसके साथ मिलन मना रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें जैसी हो, ये आत्माभिमानी बन रहे हैं, उसमें शक्तिपात, उसकी शक्तियां मुझ में आ रही है, समर्पित हो रहे हैं उसके सामने, ये परिभाषा में ही शक्तियां समाई है, यही शक्तियां है, और ये शक्तियां हमें विकारों में जाने से बचाएगी, इंद्रिया चंचल नहीं होगी, चेष्टाएं नहीं होगी विकारों की, अपने आप कंट्रोल आ जाएगा इंद्रियों पर, यही तो बल है योग का, इसको जमा करना है। अच्छा, ओम शांति।
इतना बता दे भगवन, लगी ये कैसी लगा रहा है, मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है, कैसी लगा रहा है, मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है। खोज कैसी करा रहा है।